वो अल्लाह को छोड़कर देवियों को माबूद बनाते हैं, वो इस बागी शैतान को माबूद बनाते हैं जिसको अल्लाह ने लानत ज़दा कर दिया, वो इस शैतान की इताअत करते हैं जिसने अल्लाह से कहा था मैं तेरे बंदों में से एक मुकर्रर हिस्सा लेकर रहूंगा, मैं इनको बहकाऊंगा, मैं इन्हें आरजुओं में उलझाऊंगा, मैं इन्हें हुक्म दूंगा और वो मेरे हुक्म से जानवरों के कान फाड़ेंगे, और मैं इन्हें हुक्म दूंगा कि वो मेरे हुक्म से अल्लाह की साख्त में रद्दो बदल करेंगे, और इस शैतान को जिसने अल्लाह की बजाय अपना वली और सरपरस बना लिया वो शरीफ नुकसान में पड़ गया। वो इन लोगों से वादे करता है और वो इनको उम्मीदें दिलाता है, मगर शैतान के सारे वादे बजुस फरेब के और कुछ भी तो नहीं है। इन लोगों का ठिकाना जहन्नुम है जिनसे खुलासी की कोई सूरत ना पाएंगे। सवाल पैदा होता है कि नायात में शैतान के किन धोखों की बात है और शैतान हमें कौन से धोखे देता है। तो याद रखिए, शैतान का सबसे बड़ा धोखा क्या है कि गुनाहों के साथ जन्नत मिलेगी। लिख लें, यह आपको फायदा देगी मेरी बात। शैतान सबसे बड़ा धोखा जो इंसानों को दुनिया में आने के बाद देता है वो कहते हैं इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, डोंट वरी, फिक्र नहीं करो, तुम गुनाह करो वो गफूर रहीम है, वो माफी वाला है, वो नुक्ता नवाज है। ये शैतान का धोखा है कि गुनाहों से जन्नत मिलेगी, अल्लाह ताला तुम्हें देखना जन्नत दे ही देगा। फिर इसी तरह से आप देखिए कि शैतान और क्या हमें धोखे देता है, कहता है कि देखो सारी जिंदगी गुनाह कर लो, फिर अल्लाह ने तौबा का दरवाजा खोला रखा, तौबा कर लेना, हज कर लेना, तुम्हें नहीं पता हज से सारे गुनाह माफ होते हैं, और तुम्हें नहीं पता कि एक रमजान से दूसरे रमजान के बीच के गुनाह रमजान के रोजों से माफ होते हैं, कोई बात नहीं गुनाह करो फिर रमजान आने वाला नेकियां करना, इस तरह की बातें कराता है। यानी शैतान हमेशा बंदे को गुनाह में डालता है, पहले धोखा क्या देता है, गुनाह करो गुनाह करो गुनाह करो, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, बंदा उसकी बातों में आके गुनाह कर लेता है। अब जब गुनाह करता है उसका गिल्ट आता है, दिल पे बोझ पड़ता है, तो वो तौबा करने लगता है, तो शैतान फिर नेक्स्ट अपना ट्रिक यूज करता है, कहता है देखो तुमने इतने गुनाह किए कि तुम्हारी बख्शिश होनी है, तो जब गुनाह कर ही लिया तो और कर लो, आगे जाके तुम मार पड़नी है यही मौज कर लो। बाज लोगों की जुबान से ये जुमले सुनकर हैरत होती है, कहते हैं जो मौज करो आगे बता मैं बड़ी मार पड़नी है। जिसको पता लग जाए मार पड़नी है उसको इस दुनिया में चैन पड़ेगा? अल्लाह ना करे आपको मुझे लगे कि रात को हमारा ऑपरेशन होने वाला है तो हम यहाँ दुनिया में मौज मस्ती कर सकते हैं? कभी भी नहीं। तो ये सिर्फ शैतान का धोखा होता है। फिर आप देखिए कि इसमें शैतान के तख्लीक को तब्दील करने की बात है, तो सवाल पैदा होता है कि शैतान कैसे अल्लाह की तख्लीक में तब्दीली कराता है। तो पहली बात है कि इंसान की फितरत में नेकियां करना है, शैतान उससे गुनाह कराता है, गुनाहों को ग्लैमरस करके दिखाता है, नेकियों को मुश्किल करके दिखाता है। फिर इसी तरह इंसान की तबीयत में है कि वो आखरत के लिए मेहनत करे, अल्लाह ने उसकी इंस्टिंक्ट में डाल के और उसके जिसको आप कहना चाहिए कि इंसान के डाटा में ये फीड करके भेजा है कि इस दुनिया में जाओ। फइम्मयातियन्नकु मिन्नी हुदन फमन तबी खुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहसनून। आदम अलैहिस्सलाम के ज़िमन में यह आयतम पीछे पड़ चुके पहले बारे में कि इस दुनिया में जाओ, मेहनत करो, हिदायत की पैरवी करो, फिर जन्नत मिलेगी। लेकिन शैतान क्या करता है, आखरत से हटाकर दुनिया के लिए मेहनतें करवाता है। वो कहता है इट्स फाइन, कुछ नहीं होता, माफ हो जाओगे। फिर इसी तरह कुछ फिजिकली भी शैतान हमारे अंदर तब्दीलियां पैदा करता है। बस मैं कहता है देखो अल्लाह ने तुम्हारी कैसी शक्ल बनाई, इतनी मोटी नाक है तुम्हारी, कितनी भद्दी लगती हो, तुम तो बड़ी बुरी लगती हो, बदलाओ। और कभी जैपनीज नोज और कभी कुछ, यानी प्लास्टिक सर्जरी जो एक निसाब में उसको खैर बना दिया कि अगर किसी को कोई ऐसी कैफियत हो तो वो दुरुस्त करे, उसको कैसे गलत तरह से करता है, महज शौक की खातिर फीचर्स चेंज किए जा रहे हैं, महज आप देखिए कॉस्मेटिक सर्जरी और जिस्म के उभार बढ़ाए जा रहे हैं। आज आप देखिए जितना साइंस तरक्की करती जा रही है उतने फितने हो गए, सिलिकॉन बैग्स औरतें जिस्म में रखवाती हैं ताकि उनका सीना भारी लगे। आप सोचिए सिलिकॉन जिस्म में फट जाएगा तो क्या होगा, इतनी खूबसूरती कॉन्शियस हो जाना, इतना ब्यूटी कॉन्शियस हो जाना, ये दुरुस्त तो नहीं है। हादसा हो गया, कोई तकलीफ हो गई, आप रिहैबिलिटेशन कर लें, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, लेकिन इस तरह के काम करवा लेना जो गलत है। फिर आप देखिए सूरत निसा पूरी में हमें जब बात समझ आई कि मर्द कवाम और बेमानफक मिनम वाली हिम है, औरतें घर को संभालेंगी, आज शैतान ने बिल्कुल उल्टी गंगा चला दी, बिल्कुल उल्टी तरफ फेर दिया कि औरतें भी जब तक बाहर नहीं निकलेंगी हम तरक्की नहीं करेंगे। फिर आप देखिए कि बस दफा कुछ इस किस्म की चीजें करवा लेते हैं कि जिससे सिर्फ इस सोच से कि देखो अगर तुम ऐसे नहीं करोगी तो शौहर खुश नहीं होगा। इसी में एक बड़ा फेवरेट औरतों का शौक है, वो कहती हैं कि हम प्लकिंग करते हैं क्योंकि हमारे शौहरों को बड़ी पसंद है, और अगर प्लकिंग छोड़ दी ना तो तलाक हो जाएगी। सच बताइए आप, मैं, हम सब मैरिड है माशाल्लाह, क्या कभी किसी औरत को आज तक प्लकिंग छोड़ने पर तलाक मिली? और जो रिश्ता इतना कमजोर है, चंद बालों पर टिका हुआ है, उसमें खुशी कहाँ होगी? ये सिर्फ आपके मेरे अपने अंदर की बात है, क्योंकि इन आयात में उसका भी जिक्र आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वाज़े रिवायत से ये बात पता चलती है कि अल्लाह ताला ने ऐसी औरतों को अपनी रहमत से दूरी का कह दिया कि जो अपनी भवों के बाल मोड़ती हैं। आपके चेहरे पे बाल है, आप उतार सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जिस्म के बाल है, आप उतार सकते हैं, क्योंकि इसके खिलाफ कोई नस नहीं। सिर्फ मसला सिर्फ इतने से चंद बालों का, और ये कोई इतनी बड़ा पहाड़ नहीं है। लोगों ने जान दे दी, सहाबा ने अपनी जानें काट ली, क्या हम अल्लाह के लिए अपनी चंद बातें नहीं काटते? और ये शैतान का फिर धोखा है कि सिर्फ इन चार बालों से तुम खूबसूरत लग रही हो। हालांकि आप खुद आजमा के देख लें कि 12-15 साल की बच्ची जिस दिन प्लकिंग करके आती है स्कूल में, वो 10 साल बड़ी लगती है। इनोसेंस खत्म, आपके चेहरे पे वो भोलापन नहीं रहता, फिर आपको नुकसान कितना। इतने नाजुक टिश्यूज हैं यहाँ के। तो बहरहाल, हम उसकी वजह से तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कहने का मतलब यह है कि शैतान सब करें क्या, आईना दूर से देखें। प्लकिंग जहां आप करते थे, वहां ब्लीच कर लीजिए, और अपने आप से पूछिए कि क्या शायद यही नाफरमानी ऐसी तो ना हो जाएगी कि जो मुझे अल्लाह की नजरों में गिरा दे। किसकी नजरों में जचना? चले आप बहुत हसीन लगे, अल्लाह को कैसी लग रही हूं? चंद बातें करेंगे, और ये कब होंगी? अगर अभी हमें भी नहीं समझ आ रही तो डोंट वरी, क्योंकि अभी हम बेसिक्स पे हैं। लेकिन याद रखिए, सच्चा ईमान तो बंदे को मजबूर करता है कि वो अल्लाह की पसंद का बनने लगे, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें उससे इतनी मोहब्बत हो जाए कि ये चंद चीजें, और ये हर वक्त जानकार हो गए, कहीं जाना हो सबसे पहले छुरियां कांटे लेकर खड़े हो जाएंगे। जा नहीं सकते भी, आ नहीं सकते भी, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमने अपने आप को रखा। याद रखिए, अल्लाह ने दुनिया में हमें खुद को खूबसूरत बनाने के लिए नहीं भेजा था। इस दुनिया को खूबसूरत बनाओ, इसको साफ करो, इसको अच्छा रखो, तो अल्लाह ताला कहते हैं ये शैतानी वादे हैं, और ऐसे वादे शैतान आगे भी बहुत सारे देगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें इनसे बचाए। और आखिर में देखिए, वादा कितना प्यारा है कि अगर तुम अल्लाह की बात मान लोगे, वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाती सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, रहे वो लोग जो ईमान लें और नेक अमल करें, तो हम इन्हें ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिसमें नहरें बहती हैं। हदीस में आता है कि जन्नती औरत के जिस्म पर कोई बाल नहीं होगा, आपको कोई वैक्स की मुसीबत नहीं सहनी पड़ेगी, आपको कोई लेजर नहीं करवाना पड़ेगा। जन्नत की औरत को जन्नत में ले जाने से पहले अल्लाह ताला एक ऐसी नहर में से गुजारेंगे कि जिससे उसके बाल बन जाएंगे, आपके हेयर स्टाइल खूबसूरत हो जाएंगे। हर वक्त ये नहीं कि पहले तो बाल बनवा के आए, इतनी बिन्ने स्प्रे कराए, बाद में उसको निकालने में रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बेचैन है। कर सकते हैं अगर आप कोई काम, लेकिन कितनी तकलीफ है ना दुनिया में। आप थोड़ी देर के लिए, चंद घंटों के लिए कई हजार खर्च करते हैं कि हमें मेकअप कराना है, लेकिन वॉशरूम में ही जाता है सारे का सारा। जन्नती औरत की आंखों में सुरमा लगा होगा, एक दिन में 70 दफा कपड़े बदलेगी, और काम भी तो कोई नहीं है ना। आज काम कर ले, आज मेहनत कर ले, कल देखिएगा अल्लाह ताला आपको कितनी आसानियां देगा। कब तक होगा ये सारा रिजॉर्ट ट्रिप? खालिदीन फीहा बदला, हमेशा के लिए। जन्नत का दाखला कोई 1-2-4 दिन का पैकेज नहीं है, हमेशा रहेंगे, और ये अल्लाह का वादा है। इसको 3 दफा सोचें, वादल्लाही हक्का, वादल्लाही हक्का, ये अल्लाह का वादा है और सच्चा है। तो बताओ फिर, वमन अस्तक मिनल्लाही कीला, कौन सा अल्लाह से बढ़कर अपनी बात में सच्चा होगा? अब बताइए, शैतान के वादे सच्चे कि अल्लाह के वादे सच्चे? अब कुछ लोग हैं जो अपने दौर में यही सोचते थे, आज के मुसलमान भी यही सोचते हैं, कुछ भी कर लो देखना जन्नत तुम्हें मिल जाएगी, चूंकि तुम मुसलमान हो, चूंकि तुम सैयद हो, तुम हाशमी घराने से हो, और तुम फलाह हो। तो अल्लाह कहते सॉरी, लई सभी अमानी जी को वला अमानी जी अहलिल किताब, इंजामे कार ना तो तुम्हारी आरजुओं पर मौकूफ है, न अहले किताब की आरजुओं पर। अहले किताब ने अपने दौर में ये नारा लगाया था कि हम जन्नत में जाएंगे, पीछे पड़ चुके हैं। और आज का मुसलमान लगाता है, जन्नत अगर आरजुओं पे मिलती तो कोई जन्नत से बाहर रहता? कोई है जिसको विश ना हो जन्नत में जाने की? वो लोग जो जन्नत को नहीं भी मानते, आप उनसे पूछेंगे डू यू वॉन्ट टू गो टू पैराडाइज, कहेगा यस। तो जन्नत आरजुओं से नहीं मिलती। चलिए दुआएं कर लेते हैं जन्नत की। जन्नत दुआओं से भी नहीं मिलती, किससे मिलती है? अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। तो मुझे और आपको डिजर्व करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, वी नीड टू शो कि हम इसको करते हैं। दुनिया में आप किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं, आपको बहुत ख्वाहिश है मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाए, क्या आपकी ख्वाहिश पे मिल जाएगा? नो, यू नीड टू शो देम। सेम थिंग हमें दुनिया में ही दिखाना पड़ेगा। अब कैसे मिलेगी, उसका जवाब आगे मिल गया। वमन यअमल युज़्ज़िबही वला यजिद लहु मिन दूनिल्लाहि वलीयन वला नसीरा, जो भी कोई बुराई करेगा इसका फल पाएगा। सिर्फ इतनी आयत को पढ़े तो ऐसा लगता है हर गुना पे पकड़ोगे, और अल्लाह के मुकाबले में वो कोई हामी और मददगार ना पाएगा। और इसके बरक्स, वमन यअमल मिनस सालिहाति मिन ज़करिन अव उन्सा, और जो कोई नेक अमल करेगा, ख्वाब मर्द हो या औरत हो, बशर्ते के हो वो मोमिन, तो ऐसे ही लोग जन्नत में दाखिल होंगे, और इनकी जर्रा बराबर हक तलफी न होने पाएगी। इस शख्स से बेहतर और किस का तरीका जिंदगी हो सकता है جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر لیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی. آپ کو لگتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو ابراہیم سے بڑا پیار ہے, اور ایسے لگتا ہے کہ دین اسلام کی جو ڈیپ روٹس ہیں نا وہ ابراہیم کے دین میں جھگسی ہوئی ہیں. اور ابراہیم کا طریقہ سبمیشن کا طریقہ تھا, سبمٹ کر دیا انہوں نے. وہ اللہ کے حکموں کو سن کر یہ نہیں کہتے تھے اوکے اف آئی ول ناٹ ڈو دین, انہوں نے یہ نہیں پوچھا آئی وانٹ ٹو ڈو بٹ آئی کینٹ, اچھا یہ فرض ہے سنت ہے حرام ہے نفل ہے اچھا کبیرہ ہے صغیرہ ہے, بس جو ان کو اللہ تعالیٰ کہتے تھے وہ مان لیتے تھے. اور اللہ ہمیں اسی کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ نے ابراہیم کو کیا کیا, واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اور جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا نیک رویہ اختیار کیا اور یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی, اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا. آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر محیط ہے. اللہ سے دعا مل جائے ان کو رول ماڈل بنا لیں, دیٹس اٹ, سارے کام آسان ہو گئے. دیکھیں رول ماڈل اچھا ہوتا ہے نا تو کام کرنا بھی آسان ہوتا ہے. آگے ایک آیت وراثت کے مسائل میں سے ایک لیفٹ اوور آیت ہے کہ بعض حالات میں کوئی بھی نہیں ہوتا, مرنے والے کا نہ بیٹا ہے نہ باپ ہے, یعنی اولاد بھی نہیں تو ماں باپ نہیں, اس صورت میں بھائی بہنوں کو حصہ ملتا ہے. تو اسی کے آگے ایک آیت آ رہی ہے, عورتوں کے مسائل اب دوبارہ شروع ہو رہے ہیں. صورت کے شروع میں ہم نے دیکھا نکاح اور اس کی چیزوں کو دیکھا, اب یہاں کچھ اور باتیں ہیں جو انشاءاللہ ہمیں اس میں نظر آئیں گی. وہ کیا ہے, وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ, لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں, کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں, یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو, اور یہ احکام ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور زبردستی نہیں رکھتے. اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف کرو, اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ سے چھپی نہ رہے گی. معاشرے کا سب سے دبا و طبقہ یتیم لوگ, اللہ ان کی ایسے وکالت کرتے ہیں کہ شاید دنیا کا کوئی بیسٹ لائر کسی کی وکالت کرے گا. یہ ہے قرآن کا حسن کہ اس میں دنیا حقوق دیے گئے. آج ہیومن رائٹس کا بہت غلغلہ ہے, جتنے ہیومن رائٹس قرآن بتاتا ہے اتنے کوئی اور نہیں بتا سکتا. آگے آیت نمبر 128 ہے, اب اس کو تھوڑا سا دیکھیں, بہت ساری سے اس کو لگنا ہے کہ خدا نہ خواستہ جو ان کا ہی ایشو ہے. سورت کے شروع میں ہم نے مسائل میں پڑھا کہ جب عورت کے مزاج میں بگاڑ ہو تو مرد اس کو کیسے سمجھائے. اس کے سٹیپس آپ کو یاد ہوں گے, پہلے پیار سے سمجھائے, نصیحت کرے, پھر تھوڑا سا اسے روٹ جائے, گھر میں رہتے ہوئے اسے ذرا سا الگ ہو جائے, پھر بھی نہ مانے تو ہلکی سی چپت لگا دے, پھر بھی نہ بات مانے تو پھر تین لوگ بیٹھیں کسی ادھر ادھر سے اور ان کا فیصلہ کرائیں. لیکن اب یہاں جو آیت ہے وہ کہہ کہ اگر کسی کا مرد اچھا نہیں ہے, کوئی مرد اپنی بیوی کے حق پورے نہیں کر رہا یا اس میں کوئی خرابی ہے تو اس کو کیسے دیکھا جائے گا. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا وَإِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا, اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بد سلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی حرج نہیں کہ میاں بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں, صلح بہرحال بہتر ہے. نفس تنگ دلی کی طرف جلد مائل ہو جاتے ہیں, لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین کرو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا. کیا پتہ چلا کہ بعض دفعہ حالات ایسے ہیں کہ مرد کہتا ہے میں نے تیرے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے, بعض دفعہ بیچ میں کوئی دوسری عورت آ جاتی ہے, بعض دفعہ عورت کی اپنی کو کمی ہے یا کوئی اور ریزن ہو سکتی ہے. اب ایک عورت ہے وہ زندگی کے اس دور میں جہاں اس کو لگتا ہے کہ میں نے آگے تو شادی کرنی کوئی نہیں, مجھے ملنا نہیں یا میں نے بچوں کو لینا ہے, تو طلاق لے کے کیا کروں گی؟ تو میاں کو کہتی ہے اچھا بھائی جاؤ تم ادھر رہ لو, شادی کر لو بھی کر لو, بس مجھے پڑے رہنے دو, یعنی تمہیں اپنی ذمہ داریوں سے آزاد کرتی ہوں. تو ایک قسم کا یہ اگریمنٹ ہوگا, اس کا ذکر ہے. دیکھیے عورت اپنی طبیعت کے اعتبار اور فطرت کے اعتبار سے طلاق نہیں چاہتی, اس کو اچھا نہیں لگتا, اور انسان کو ہمیشہ خواہش رکھنی چاہیے. اسی طرح دیکھیے کہ اگر کسی کے شوہر کے دل میں اس کی محبت نہیں ہے یا وہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے یا کچھ بھی ہے, تو پھر اس کو اتنا ڈیلے کر کے اتنا آگے جا کر دو چار بچوں کی ماں باپ بننے کے بعد سوچنے کی بات نہیں ہے. آپ کو اگر اللہ حکمت ہے تو فیصلے پہلے ہی اچھے کریں, بچے بچیوں کے رشتے کرتے وقت اچھے کریں. اللہ نہ کرے شادی کے بعد کوئی پول کھلتا ہے, تو پھر اگر تو وہ ریکیوریبل ہے تو کر لیجئے, اصلاح کریں, وقت دیں, دین سے جوڑیں. اگر دینی بگاڑ ہے, نماز روزہ نہیں ہے, کرپشن ہے, خرابی ہے, دو تین مہینے کا ٹائم دیں, رہتے ہوئے ساتھ سوچ لیں. لیکن اگر لگتا ہے کہ آدھی مجرم ہے, یہ کبھی چھوڑے گا نہیں, یہ ہوگا نہیں, تو پھر ضائع نہ کریں. جہاں ایک بچہ بیچ میں آتا ہے بس وہ فطرت کا ایک خاموش اشارہ کہ اب اس گھر کو بننا ہی ہے, توڑنا نہیں ہے. تو ان آیتوں پہ ہم بہت ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں کہ گھر کو توڑنا نہیں جوڑنا. اور یاد رکھیے کہ ہر ایک کو بہت نیک شوہر نہیں ملتے, हम सब एक ही जैसे होते हैं, सिर्फ होता क्या है कि जब हमारी जिंदगी में कुरान खुलता है तो अल्लाह ताला हमारी आंखें खोलता है, हम रो धो के अपने पिछले गुनाह माफ कराते हैं, फिर आगे नेकियां करते हैं, लेकिन हमारे शौहरों की स्पीड बहुत सुस्त है। अब क्या करें, घर तोड़ लें, अब क्या करें, इस उम्र में किधर जाएं, जाएं तो किधर जाएं। आप उनको वही करें जो आपके साथ हुआ, सब्र करें, दुआ करें, दुआएं मांगे, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुन, सूरह फुरकान के आखिरी रुकू की ये दुआ है, पारा नंबर 19 में आप पढ़ सकते हैं अगर देखना चाहें। इसी तरह कुरानी दुआओं में भी मौजूद है। फिर इसी तरह से आप देखिए, उसको समझाएं, कौले बलीग करें। कुफार के दिल में भी इस किताब ने हरकत पैदा कर दी, हम तो मुसलमान हैं, फिर आप उसकी सोसाइटी बदलें, किसी अच्छे ब्रदर को उनसे मिलाएं, किसी शहर में रहने वाले इमाम साहब, मस्जिद के लोग हैं, उनसे बात कराएं, और अगर आपको लगता है कि कोई खास पर्सन है, कोई खास माहौल है, तो उधर से जान छुड़ाएं और उम्रे पे चले जाएं कुछ अरसा रहे, यानी फिजिकली आप कुछ मेयर्स लें। खामोश रहना कि अच्छा देखना एक मौजजा होगा और इनका दिल बदल जाएगा, नहीं। और इब्तिदा होती है 5 वक्त की नमाज से। अगर अकीदा ठीक है लेकिन गंदगी आ चुकी है, तो 5 वक्त की नमाज प्यार से, मोहब्बत से, चले मिलके पढ़ते हैं, चले मैं भी पढ़ूंगी, आप पढ़े, चले आप जमात कराइए, बच्चे भी साथ पढ़ेंगे, चले मिलके मस्जिद जाते हैं। एक औरत को अल्लाह ने बहुत समझ दी है, इसलिए घर तोड़ने से पहले पूरी तरह इसलाह कीजिए, क्योंकि आपने यहां दुनिया का घर तो तोड़वा लिया, उस शख्स की जहन्नम होगी। तो शौहर बीवी को एक दूसरे को दीन पे लाने में बहुत मदद करनी चाहिए, और आप नोट करेंगे कि बाज दफा सिर्फ इग्नोरेंस होती है, माँ बाप ने बताया ही नहीं है, भाई बहनों ने बताया नहीं, आगे हालात बिगड़ गए। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज भी हैं कि कैसे औरतों ने अपने बिगड़े हुए शौहरों की इसलाह की थी। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि किसी को भी इस आजमाइश में ना डाले, अगर वो पढ़ चुका है तो उसको अच्छे तरीके से टैकल करें, जज्बाती होने, जोश में आने और गलत बातें करके बात को और बिगाड़ने की जरूरत नहीं होती, और अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। फिर उसके बाद फरमाया, वलन तस्तति वन तादिलु बैनन निसा, अब अगर एक मर्द है उसकी एक से ज्यादा बीवी है तो क्या उसके साथ होगा, इसकी तरफ इशारा है। फरमाया, बीवियों के दरमियान पूरा पूरा अदल करना तुम्हारे बस में नहीं है, यानी इट्स नॉट पॉसिबल कि दो बीवियों के साथ बिल्कुल एक सा ही ताल्लुक रखो, क्योंकि ये मुमकिन हो ही नहीं सकता, तुम चाहो भी तो इस पर कादिर नहीं। लिहाजा कानून इलाही का मंशा पूरा करने के लिए काफी है कि एक बीवी की तरफ इस तरह न झुक जाओ कि दूसरी को उधर लटकता छोड़ दो। अगर तुम अपना तर्ज अमल दुरुस्त रखो, अल्लाह से डरते रहो, तो अल्लाह ओवरलुक करेगा, यानी चश्म पोशी करने वाला और रहम फरमाने वाला है। लेकिन अगर जौजैन एक दूसरे से अलग हो ही जाए तो अल्लाह अपनी वसी कुदरत से हर एक को दूसरे की मोहताजी से बेनियाज देगा। अल्लाह का दामिन बहुत कुशादा है और वो दानव भी ना है, आसमान और जमीन में जो कुछ वो सब कुछ अल्लाह का है। तुमसे पहले जिनको हमने किताब दी थी, इन्हें भी हमने यही हिदायत की थी, और अब तुमको भी यही हिदायत करते हैं कि अल्लाह से डरते हुए काम करो, लेकिन अगर तुम नहीं मानते तो ना मानो। आसमान और जमीन की सारी चीजों का मालिक अल्लाह ही है, और वो बेनियाज है और हर तारीफ का मुस्तहिक है। हाँ, अल्लाह ही मालिक इन सब चीजों का जो आसमानों में है और जमीन में। 3 सेकंड तक जरा इस पर गौर करें, सब कुछ आसमान और जमीन में, क्या क्या आता है उसमें। बड़ी चीजों से ना शुरू करें, दुनिया की सबसे छोटी चीज से शुरू करें, और वो कौन है, मैं अल्लाह की हूं, मेरे पे अल्लाह का इख्तियार है, मेरा अल्लाह मुझे जिंदा रखे मारे, कल उठूं तो आंखें ही ना हो, आंखें हो तो देखे ना, क्या नहीं मुमकिन, कल उठूं तो मेरे कान सुनने से इनकार कर चुके हों, मैं बोलने लगूं तो मेरी जुबान कट जाए, कल खबर मिले मेरे जिस्म में कोई बड़ी खतरनाक बीमारी है, क्या नहीं मुमकिन। तो जिस रब की इतनी जरूरत हो, क्या मैं उसकी नाफरमानी करूंगी। देखिए, हम बहुत सारे कामात को अकल पे लेते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि जो दिल पे लेने से तब्दीली आती है वो अकल पे लेने से नहीं आती। अकल ने तो बहुत सारे बड़े बड़े मसाइल हमें समझा दिए कि ये भी हराम है, ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन मानते क्यों नहीं, क्योंकि अभी दिल नहीं आया। तो आइए अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तुम्हारा दिल बदल दे। अपनी दुआ में ये दुआ शामिल करें कि अल्लाह मसर्रिफ कल्बी अला दीनिक, या मुकल्लिबल कुलूब सर्रिफ कल्बी अला दीनिक। इताअत पे जितना ज्यादा अल्लाह सुबहान तला से दुआएं मांगेंगे, आप देखेंगे अल्लाह तला उतना ही आपके लिए आसान भी कर देगा। और हकीकत है कि अपने बच्चों के, अपने प्यारों के दिलों को पकड़ने की जरूरत है। पर दिल का इलाज किस चीज में है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। आजकल रमजान के दिन इनको वेस्ट ना करें, आप अपने हस्बैंड्स और अपने भाइयों को थोड़ा सा इस चीज पे तैयार करें। देखिए, कमाते तो आप सारा साल है, रमजान में थोड़ा कम कर लें, जॉब आवर्स हैं, उसके बाद आप कुछ और करते हैं, आप छोड़ दें, आए बैठ के कुरान पढ़ते हैं। अब आप सुन रहे हैं ना, कितना मुख्तसर सा हम कुरान की डिटेल्स को ले रहे हैं ना, सिर्फ तर्जमा है, हल्का सा उनको भी सुना दें, किसी भी तरह, किसी का इंग्लिश का, उर्दू का, जो जुबान उनको आती है, कि हमारे घर वाले इससे महरूम रहे। क्योंकि अभी तो आगाज हुआ है, 5 पारे अभी हुए हैं, अभी 1/6 पीछे पड़ा हुआ है कुरान। आपका दिन ब दिन शरह सदर होगा, और जो ही आपके आंसू आपके अपने पुराने गुनाहों को धुलाएंगे, अगला गम आपको अपने बच्चों का और अपने घरों का पड़ेगा, शोहरों का। फिर बाद दफा दूरियां बनती हैं, बाद दफा परेशानी है, आज साथ चले। मैं अक्सर कहती हूँ ये जुमला कि नेकियों का सफर तनहा नहीं शुरू करना, घर वालों को साथ लेकर चले। और मुझे ऐसे लगता है कि गाड़ी से अगर तशबीह दें ना, तो औरत जो है वो स्टेयरिंग पे बैठी हुई है। सच्ची बात है, हम कहने को कहते हैं कि हमारे मर्दों का रोब है और उनकी बात चलती है, लेकिन हकीकत में औरत का होल्ड है, मर्द उसके साथ वाली सीट पे बैठा है, पिछली सीट पे आपके बच्चे हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि आपने गाड़ी का रुख जन्नत की तरफ मोड़ा तो आपके मियाँ साहब कहीं और मोड़ लें, और आपके बच्चे के हम तो इस दुनिया में खुश हैं। सबको एक तरफ जाना है, तो प्यार से रो के धो के कैसे करें, जवान बच्चों को आज बिठाएं, शाम को बिठा ले। याद रखिए, जिंदगी को कीमती समझें, लम्हों को इस्तेमाल करें, गिना ना करें कितना बोला कितना सुना है, आज सुन लिया 3 घंटे, वो घंटे गिनिए जिसमें कुछ नहीं किया। लोग कहते कैसे आप 2-3 दफा बोलेंगे, मैं कहती हूँ कैसे नहीं बोलूंगी, इतनी जरूरत है, लोग इतनी तड़प रखते हैं, प्यासे हैं, तरस रहे हैं, तो मैं क्या इतनी स्टिंजी बन जाऊं। और आप देखिए कि जब आपको इस चीज का एहसास होता है ना कि हमने पैगाम आम करना है, कुंतुम खैरा उम्मत है, फिर नहीं सोते। अच्छा कारोबारी कौन होता है, हर जगह अपना बिजनेस ढूंढ लेता है, तो अच्छा दाई दीन, अच्छा मुसलमान शख्स कौन है जो नेकियों के हिस्से लेता है। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें इन चीजों पर इस्तकामत भी दे और खैर वाला बनाए। यशा युसुफ को मई युहन्नास, नहीं करते कुछ ना मानो, तुम अल्लाह के नहीं बनना चाहते, अल्लाह मालिक है आसमान और जमीन का और सब काम वही करता है, तो अगर तुम नहीं उसके करते तो वो क्या कर सकता है। यहां से पीछे से पढ़ूंगी, हाँ अल्लाह ही मालिक है इन सब चीजों का जो आसमानों में है और जमीन में है, और कारसाजी के लिए बस वही काफी है, अगर वो चाहे तो तुम लोगों को हटाकर तुम्हारी जगह दूसरों को ले आए, और वो इसकी पूरी कुदरत रखता है। सोचिए 3 सेकंड तक सोचिए, क्या अल्लाह की ताकत है कि मुझे हटा के दूसरों को ले आए, 1 सेकंड लगता है, 1 मिनट लगता है, पीछे वाली आयतों से चल रहा है सारा मामला। एक बीवी जाती है उसकी जगह दूसरी आ जाती है, आप एक नेक शख्स की कदर नहीं करते, अल्लाह उसको आपसे अच्छी बीवी दे देता है, और इसी तरह अपोजिट मामला भी है। तो मैं और आप अल्लाह की मजबूरी नहीं है, सिंपल सी बात है। जब कोई नेकी ना करने को दिल करे तो खुद को ये कहें कि अल्लाह का क्या बिगड़ता है, नहीं तो ना सही, तुम रूठे हम छूटे, ना करो तो नहीं करती तो ना करो। यही बात आगे हम सूरत मायदा में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ने इतना क्लियर कट मैसेज दे दिया, आते हो तो शौक से आओ, रोते हुए ना आया करो, दुखी हो के ना मेरे सामने बैठा करो, और तड़पते और एहसान जतलाते और गिनते बालिश्तों के साथ अपनी नेकियां करते हो तो तुम अपने पास रखो। अल्लाह को खुले दिल से नेकियां पसंद है, अल्लाह के साथ खुला मामला रखें, अल्लाह आपको खुली जन्नत भी देगा और दुनिया भी आपके ऊपर कुशादा कर देगा। फरमाया जो रह गई बात इसके पीछे कि मन कान युरीद सवाब दुनिया, जो शख्स महज सवाब दुनिया का तालिब हो, यानी जिसको चाहिए दुनिया, आप देखिए जो भी रीजंस है बीच में दुनिया ही होगी ना ना करने की, अगर तो फरमाया इसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के पास सवाब दुनिया भी है और सवाब आखरत भी है, और अल्लाह ताला समीउ बसीर है। कोई बादशाह ऐलान करे क्या हो मेरे पास और जो मांगो तुम्हें दूंगा, एक तरफ उसने डायमंड्स रखे हो और दूसरी तरफ उसने जरकोन रखे हो, हम क्या लेंगे? डायमंड्स लेंगे ना। कितना ना समझ है जो जरकोन पकड़ ले और डायमंड छोड़ दे। दुनिया क्या है? जरकोन है, चमकती तो है, ज़ुय्यिना लिन्नास, लेकिन असल इसकी नुकसान है। हदीस में आता है कि अगर एक मच्छर के पर के बराबर भी इस दुनिया की अहमियत होती तो अल्लाह तआला किसी भी काफिर को पानी का एक घूंट ना देता। कुरान क्या है? एक मैग्नीफाइंग ग्लास है जो हीरे और जरकोन का फर्क बताता है। जब ये आंखों पे ऐनक लगती है ना, फिर पता चलता है कि किया तूने मताए गुरूर का सौदा। जिस दुनिया को बनाने में लगे रहे, उस दुनिया को जब छीनने, जब उस दुनिया से जाने का वक्त आता है, फिर इंसान रोता है। 15 साल 16 साल की उम्र में दुनिया से बच्चे जा रहे हैं, 18 साल के जा रहे हैं, 26 साल के बच्चे जा रहे हैं, 28 साल के जा रहे हैं, क्या लेकर के साथ? अहमाल की पोटली। तो मत सोचिए कि हम बहुत जिएंगे, शैतान के जो धोखे पीछे पड़े उसमें ये भी धोखा है, खूब जियो, अभी गुना करो, नेकी देखे, अभी यू आर स्वीट टीन एज, अभी क्या, अभी तौबा करेंगे, शादी होले फिर तौबा करेंगे, अच्छा जरा हज कर लूं फिर तौबा करूंगी। अल्लाह कहते तुम्हें क्या पता तुम्हारे जाने का वक्त कब आ जाए, तुम पता नहीं कहीं जा सको ना जाओ और मैं तुम्हें अपने पास बुला लूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़वामीना बिल्क़िस्त, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इंसाफ के अलम बरदार और खुदा वास्ते के गवाह बनो। देखिए अगर ये आयतें हम नॉन मुस्लिम्स के साथ शेयर करें तो कभी वो हमारे दीन को बुरा ना कहे, सच्ची जो बात है, बार बार, और अगली सूरत में तो बहुत कसरत से आएगा, अदल करो, इंसाफ करो, बी जस्टिस, बी वाइज, किसी की तरफ ना झुको। तो अगर आज हम मुसलमानों ने कुरान के ये हुक्म सुने होते और माने होते तो आज लोग कम अज कम इस्लाम को तो बुरा ना कहते हमारी वजह से। اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑے، یعنی مار بھابھی کا جھگڑا اور آپ کو صاف سمجھ آ رہا ہے کہ قصور آپ کی ماں کا ہے، تو ڈونٹ ٹیک سائڈ آف یور موم، یو نیڈ ٹو ٹیک دی سائڈ آف یور بھابھی، امی بھابھی سچ پہ ہیں، بدتمیزی نہیں کرنی، روٹ نہیں ہونا، لیکن حق والے کا ساتھ دیں۔ سسرال اور میکے کا معاملہ ہے تو جس کی غلطی ہے اس کو دیکھیے، بعض دفعہ ہم کسی کی طرف انکلائن ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا اپنا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چاہے تمہارے ماں باپ کو یا تمہیں اس کا نقصان ہو اور تمہارے رشتہ داروں کو، پھر بھی یہی کرو کہ حق کا ساتھ دو۔ فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، بس اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو۔ اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا، فلا تتبع الہوى ان تعدلوا، یہ سب سے بڑا بت ہے جو انصاف نہیں کرواتا، خواہش نفس، لسٹ، اپنی ذات کا بڑا ہونا، خواہشات۔ اللہ کہتے ہیں اپنے نفس کے انکلائنیشن کو نہ دیکھو بلکہ عدل کو دیکھو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ 3 سیکنڈ تک سوچیں، جو میں کرتی ہوں کیا اللہ کو اس کی خبر ہے؟ اور اللہ مجھے اس سب کا بدلہ دے گا؟ اللہ تو میرے حال پہ رحم کرتے۔ اس کے بعد اب سورت کا وہ اینگل شروع ہو رہا ہے کہ جہاں دو رخے لوگوں کی باتیں ہیں، منافقین کے تذکرے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ۔ یہ کیا بات ہوئی، یہ کیسے ہوا؟ ایمان لا چکے ہو پھر بھی ایمان لاؤ، یہ قرآن کا بڑا یونیک نقطہ ہے۔ ایمان لانے والوں کو ایمان لانے کی دعوت دی، ایسی جیسے کوئی سو رہا ہوتا ہے کہ او سونے والوں سو جاؤ، او کھانے والوں کھا لو، بات نہیں بنتی نا۔ تو ہم تو کہتے ہیں ایمان لا چکے، اللہ کہتے پھر لو، کون سا لفظی ایمان لا چکے ہو، اب شعوری لے کر آؤ۔ تمہاری زبان نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اب اپنے جسم سے اس ایمان کے تقاضے پورے کرو۔ خاندانی ایمان کو چھوڑ کر اللہ کے حکم والا ایمان لے کر آؤ، پھر کیا ہوگا، کس پر لانا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر، اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی۔ اور یاد رکھیے، یہ چینج سب کو اپنے اندر فیل ہوتی ہے پہلی دفعہ قرآن پڑھ کے۔ ایک وہ ایمان تھا جو بچپن سے لے کے آج تک تھا، جو ہمارے کان میں اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کی صورت میں اذان دی گئی تھی، وہ ایمان آج تک ہمیں لڑکا پڑکا رہا تھا۔ ماں باپ کے ڈر سے نمازیں بھی پڑھ لیتے تھے، کبھی معاشرے کے ڈر سے کچھ گناہ بھی چھوڑ دیتے تھے۔ اب ایک دوسرا ایمان آپ کی میری زندگی میں آئے گا، یہ شعوری ایمان ہے، یہ ہے اصل ایمان مطلوب، کہ جس میں کوئی کہتا نہیں کہ اٹھو نماز پڑھو، جس میں کوئی آپ کو روکتا نہیں ہے کسی برائی سے، آپ کو خود بخود لا جاتی ہے، شرم آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسی ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا، جس نے اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر اور روز آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا۔ ہائی لائٹ کریے گا اس آیت کو، میں اس آیت کو پڑھتی ہوں تو میرے ذہن میں ایک لفظ آتا ہے، کفر اور اسلام کی آنکھ مچولی۔ دیکھیے لائٹ جل رہی ہے پھر بند ہو، جلے پھر بجھے، جلے پھر بجھے، کیسا ہوگا، لائٹ فیوز ہو جائے گی نا۔ اسی طرح جب کوئی مومن ایمان پہ آئے، پھر زندگی میں کفریہ کام، ناشکری کے کام، ایک اچھا کام ایک برا کام، ایک اچھا کام ایک برا کام، تو اس کا نتیجہ نفاق کی صورت میں آتا ہے۔ کفر کیا ہے؟ ڈینائل، اور ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اس کو مان لینا۔ تو جب آپ اللہ کے ایک حکم کو مانیں پھر چھوڑیں، ایک کو مانیں پھر چھوڑیں، کیا ہوگا، فیوز ہو جاتا ہے ایمان کا بلب۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا، اور رات کو جب اپنے بستر پہ سوئے گا تو کافر ہو کر سوئے گا، پھر اگلے دن مومن، پھر کافر۔ پتہ نہیں راتوں کو کیا دیکھتا ہے، کیا سنتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیا اس کے گناہ ہیں رات کے، جس کو اللہ نے کے نبی نے اس طرح پیش کیا۔ تو دعا کیجئے کہ کفر اور ایمان کی آنکھ مچولی ختم ہو، اور اللہ ہمیں سیدھا سیدھا ایمان والا بنا دے۔ ایسے لوگوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا، اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا۔ یہ بھی ایک اللہ کی سزا ہے، جب بندہ یوز ٹو ہو کے گناہ کرتا ہے، جب اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرتا ہے، لیگلائز کرتا ہے، تو اللہ پھر اسے ہدایت چھین لیتا ہے۔ بندہ گناہ کرے پھر شرمندہ ہو، روئے، اللہ معاف کرے گا۔ اسی صورت کے شروع میں پڑھ چکے ہیں، انما التوبہ علی الذین، وہ لوگ جن کے توبہ ہوگی قبول، وہ کون ہے کہ جن سے گناہ ہو جاتا ہے، بسو ان بجہالت، پھر توبہ کر لیتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن جانتے بوجھتے پلان قسم کے گناہ مومن نہیں کر سکتا۔ چلیے 3 سیکنڈ تک سوچتے ہیں، कोई ऐसी प्लानिंग है मेरी आगे कुछ महीने बाद, जैसी रमजान के एंड होने के बाद, कि जो गुनाह की कोई दावत की हो। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें अपनी इस्लाह करने की खुद तौफीक अता फरमाए। अब ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जहन्नम की नवीद देते हैं कि जो नाम के मुसलमान काम के काफिर, कभी मुसलमान कभी काफिर, का बशर मुनाफिकीन बि अन्न लहुम अज़ाबन अलीमा। और खुशखबरी सुना दो इनको जो लोग ऐसे काम करते हैं जो मुनाफिक हैं, यानी और जो मुनाफिक अहले ईमान को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त बनाते हैं, इनको ये खबर सुना दो कि इनके लिए दर्दनाक सजा तैयार है। और आप नोट करें, अब अगला मौजू जो साथ ही चल रहा है ना, वो काफिरों से दोस्ती है। अक्सर ईमान वालों में निफाक कुफर से मरूबियत से आता है। काफिर तरीके, कुफराना रास्ते, कोई ऐसे दोस्तियां और उनकी महफिलें, उनकी पार्टियां। हाँ, ये कैसे हो सकता है कि महफिल हो तो शराब ना चले? हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है कि सेग्रीगेशन हो और पार्टी हो? इस तरह की चीजें जो काफिरों को अच्छी नहीं लगती, जब मुसलमान उसको उनकी कटसी में अपने अंदर ले आता है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उससे ही वायरस पैदा होता है जिसका यहाँ जिक्र है। और अमूमन लोग ऐसा क्यों करते हैं? प्रेस्टीज मैटर बनाकर। एक जगह थी तो वहां था, बहुत अच्छा हॉल, सब कुछ था, लेकिन सिर्फ इतनी सी उनकी रिक्वेस्ट थी कि बीच में एक पार्टीशन कर दें, क्योंकि खवातीन में बहुत सारी बपर्दा है, मर्द एक तरफ हो जाए औरतें। तो उन्होंने कहा, वी कैन डू बिकॉज इट्स प्रेस्टीज मैटर, हमारे हॉल की लुक खराब होगी, फिर दुल्हन पूरी दूर से नहीं दिखेगी। तो जब ये ऐसी बातें कि आप चाहते हैं इज्जत मिले, और लोग, वाह क्या शादी की, क्या बिग हॉल था, क्या मिक्स गैदरिंग थी, क्या लग रहा था, तो अल्लाह ताला कहते हैं, यब्तगून इंदहुमुल इज्जा, क्या ये उनसे इज्जत चाहते हैं? इज्जत के लिए सब कुछ करते हैं? इज इट देयर प्रेस्टीज मैटर? तो इनको बता दो कि फाइनल इज्जत अल्लाह जमिया, हालांकि इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह ही के लिए है। और अल्लाह इस किताब में तुमको पहले से हुक्म दे चुका है कि जहां तुम सुनो कि अल्लाह की आयतों के खिलाफ कुफर बोला जा रहा है और इनका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो वहां ना बैठो जब तक के लोग किसी दूसरी बात में ना लग जाएं। अब अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम भी इन्हीं की तरह हो। यकीन जानो कि अल्लाह मुनाफिकों और काफिरों को जहन्नुम में एक जगह जमा करने लगा। कितनी आसान आयत है समझने में, कोई है इसमें मुश्किल बात? ऐसी महफिलें, ऐसी दावतें, पार्टियां, गैदरिंग्स जहां अल्लाह और उसके रसूलों का, कुरान की आयतों का मजाक उड़ाया जा रहा है, वहां मत बैठो, क्योंकि तुम वैसे ही हो जाओगे। देखिए, यहां से नुक्ता आगाज होता है किसी मुसलमान के कुफर में जाने का। डायवर्शन पॉइंट जो है ना, वो यही होता है कि ऐसी जगहों पे जाना, बात मजबूरियों के नाम पे जाते हैं, क्या करें, तोहफा देने जा रहे हैं, गिफ्ट दे आए, अच्छा क्या करें, बच्चे की शादी है, ससुराल की शादी है, बेटी का ससुराल है, दूसरों को खुश करते करते इंसान अल्लाह को नाराज कर देता है। अल्लाह ताला कहते हैं जब किसी चीज को गलत देखते हो, यहां नोट कीजिए, सिर्फ उस महफिल को छोड़ना है, उन लोगों को नहीं छोड़ना, रिश्ते नहीं काटने, दोस्तियां नहीं छोड़नी, लेकिन उनकी गलत चीजों को छोड़ना है। क्या वहां खड़े होकर तकरीर करनी है, बहस करनी है? नहीं, पहले से बता दीजिए, पहले से अपना किबला सही कर लें, लोग कभी भी आपको मजबूर नहीं करेंगे। और याद रखिए, ये खुशफहमी है हमारी कि हमारे बगैर कोई फंक्शन नहीं होता, हर जगह जब तक पहुंचूंगी नहीं मेरे काम नहीं होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हम सब के लिए ये बातें आसान कर दे, समझनी और अमल करनी। फरमाया, अल्लज़ीना यतरब्बसूना बिकुम, ये मुनाफिक तुम्हारे मामले में इंतजार कर रहे हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। अगर अल्लाह ताला की तरफ से फतह तुम्हारी हुई तो आकर कहेंगे कि क्या हम तुम्हारे साथ ना थे? अगर काफिरों का पल्ला भारी रहा तो इनसे कहेंगे क्या हम तुम्हारे खिलाफ लड़ने पर कादिर ना थे? फिर भी हमने तुमको मुसलमानों से बचाया, बस अल्लाह ही तुम्हारे और इनके मामले का फैसला क्यामत के रोज करेगा। और इस फैसले में अल्लाह ने काफिरों के लिए मुसलमानों पर गालिब आने की कोई सबील नहीं रखी। यकीन करें, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आयते हैं। अगर अभी जल्दी में पढ़ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा ना, तो इस पूरे रुकू को तदब्बुर के रख में घर जाके एक दफा इसके तर्जमे को बस लफ्ज ब लफ्ज पढ़ लें, आपको बहुत बातों का जवाब मिलेगा। क्योंकि मैं इन बातों को अपने लफ्जों में दोहराऊंगी ना, तो आपको फिर ये कुरान की बातें नहीं लगेंगी। लेकिन ये है उम्मत वसत का आज एक मसला। हम अल्लाह को भी खुश करना चाहते हैं, लेकिन हम वो चीजें नहीं छोड़ पाते जिनसे हमारे ख्याल में इस दुनिया में हम तरक्की कर रहे हैं, हालांकि तरक्की अल्लाह की बात को मानने वालों में है। फरमाया, इन्नल मुनाफिकीन युखादिउनल्लाह वहुवा खादिउहुम, ये मुनाफिक अल्लाह के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, हालांकि दर हकीकत अल्लाह ही ने इनको धोखे में डाल रखा है। जब नमाज के लिए उठते हैं तो कसम मसाते हुए, यानी सुस्ती के मारे, महज लोगों को दिखाने की खातिर उठते हैं और अल्लाह को कम ही याद करते हैं। जब रातें इस किस्म की महफिलों की नजर हो जाती है ना, लेट नाइट फंक्शंस, जहां वो सब कुछ हो रहा है जो अल्लाह को नहीं पसंद, तो उसका सबसे बड़ा फैक्ट फजर की नमाज पे काम हो कुसाला, आंखें भी नहीं खुलती, उठ जाओ। बड़ी बात है, ये भी बड़ा जिहाद है, कहां एक इंसान उठे ही ना। और नमाज में ला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, याद ही नहीं है नमाज में अल्लाह को, क्या याद किए, वो तो आंखें बंद करके दो सजदे दिए ताकि काफिर ना बन जाए, और फिर बंद आंखों के साथ किए हुए वजू से नमाज पढ़ी हुई जाके बिस्तर पे सो गए। याद रखिए, जितना हमारी जिंदगी में फन और एंटरटेनमेंट और ग्लैमरस थिंग्स बढ़ती हैं, उतना ही नमाजें बेकैफ हो जाती हैं। नमाज का एक हुसन है, और वो उसको मिलता है जिसका दिल खाली होता है। और जब हम दिल दिमाग को हर वक्त, आज वीकेंड इधर, ये वीकेंड इनके घर, आज उधर दावत, आज उधर पार्टी, यानी टू मच सोशलाइजिंग, बाज दफा ईमान से इंसान को दूसरी तरफ ले जाती है। अल्लाह के नबी रमजान में सोशलाइजिंग खत्म कर देते थे, कम बोलते थे, कम खाते थे, कम सुनते थे, कम सोते थे, और लोगों से कम मिलते थे। वजह क्या है कि जब लोगों से मिलेंगे, एक तो गलत बातें होने का डर है, फिर दूसरी बात है टाइम कितना वेस्ट होता है, फिर वो सारी रीलें घर आके चलती हैं, ये देखा वो सुना। तो इसलिए अपने आप को खतरों में डालना इंसान के अपने ही नुकसान के लिए। तो अल्लाह ताला कहते हैं मुजब जबीन अबीन जालिक ला इलाहा उलाई वला इलाहा उलाई, ये दो कश्तियों के सवार हैं, कैसे, कुफर और ईमान के बीच में डावाडोल है, ना पूरे इनकी तरफ है ना पूरे उसकी तरफ, जिसे अल्लाह ने भटका दिया उसके लिए तुम कोई रास्ता नहीं पा सकते। देखिए, ऐसे लोगों को कोई भी पसंद नहीं करता, दीन वालों में आएंगे तो दीन को अच्छा समझेंगे, फिर दुनिया की कोई ऐसी, और दुनिया नहीं बल्कि गुनाह की कोई चीज मिली तो वो भी नहीं छोड़नी। अब हुआ क्या, ना इधर ना उधर, ना दुनिया वाले इनको अब कबूल कर रहे हैं क्योंकि ये अल्लाह वाले बन गए, और ना दीन वाले इनको पसंद करते हैं कि अच्छा जी ये किधर गए, यानी मुनाफिक की जान अटकी होती है इधर का उधर। आप देखिए ना, दो कश्तियों में किसी के पांव रखे तो खौफ क्या होगा, गिर जाऊंगा, एक कश्ती इधर एक उधर, एक कश्ती दीन की है एक दुनिया की है, आप उन दोनों में रहेंगे तो नतीजा क्या, दीन वाले तो अपने रुख पे निकल जाएंगे और दुनिया वाले ऐसी रुख पे जाएंगे जहां आप जाना नहीं चाहते, क्योंकि अब आपको समझ आ गई है, आप ठस करके उस गुमराही के समंदर में गिर जाएंगे। इसलिए टाइम लगता है, मैं नहीं कहती कि ये सारे काम एक दिन में हल हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए टाइम लगता है। आई डेयर यू एटीट्यूड, इस तरह से लोग बाज दफा निफाक में लम्हा बलम्हा दाखिल होते हैं कि उनको खुद नहीं पता चलता। जैसे बीमारी कभी कई रुख लेकर आखिरी स्टेज में जाहिर होती है ना, खासतौर पे कैंसर, पता भी नहीं चलता पहले, लेकिन एंड पे जब निकलती तो खत्म नहीं होती। इसी तरह मुनाफकत भी डिफरेंट तरह से निकलती है, इधर से उधर। और आप ये सारी आयतें जो भी पढ़ चुके हैं, अगर आपने गौर से सुना इसको तो आपको वजह समझ आ गई। इसका नुकता आगाज कुफर से दोस्ती है, कुफर से मतलब काफिर नहीं है, फिर मेरे एक एक लफ्ज को सोचा करें, काफिर नहीं कहा, कुफर से दोस्ती। काफिर से दोस्ती बहुत अच्छी है, आप उसको इस्लाम देना चाहते हैं, आप सब जाके नॉन मुस्लिम से दोस्ती करें, दे शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड, लेकिन कुफर से नहीं करनी। आप किसी मजहब की सिस्टर से दोस्ती करें, यू कैन डू, बट उनके गलत तरीके से दोस्ती नहीं करनी। इधर से आगाज होता है और आहिस्ता आहिस्ता वो ऐसा फैल जाता है कि फिर हम उन जैसे काम करते हैं, क्योंकि इंसान हदीस में आता है अलमरु अला दीन खलीली ही, आदमी अपने दोस्त के दीन पे होता है। अब अगली आयतों में अल्लाह ताला हमें चार तरीके सिखाते हैं निफाक से निकलने के। मुनाफकत से अपग्रेड होना चाहते हो तो क्या करो, पहले तो अल्लाह ने यह आयत कहकर हम सबको ही डरा दिया कि इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल असफली मिनन नार, बेशक मुनाफिक जहन्नम के सबसे गहरे दर्जे में होंगे। आपको पता है कि जन्नत ऊपर है तो जहन्नम नीचे है, जैसे किसी भी तंदूर को सोचे, जितना डीप डाउन जाएंगे ना उतना ही टेम्परेचर ज्यादा होगा, ऐसे ही है ना। तो काफिर भी कहीं ऊपर ही होंगे क्योंकि वो तो ओपनली कह दिया उन्होंने, हमसे कोई उम्मीद ना रखना, सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते। मुनाफिक कौन होता है जो उम्मीदें दिलाता है अल्लाह को, आई एम मुस्लिम, ला इलाहा इल्लल्लाह, 1000 दफा तस्बीह पे पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा ला इलाहा, कुछ भी पढ़े लेकिन वो अपनी जोम में कुछ पढ़ ही रहा होता है, वो बार बार पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह तस्बाना कैनी कुंतु मिन ज़ालिम, ला इलाहा इल्लल्लाह तस्बाना कैनी कुंतु मिन, फिर भी काम वही कर रहा होता है जिसमें उसको कोई शर्मिंदगी नहीं होती। तो अल्लाह को सबसे ज्यादा गुस्सा जिस पे आता है ना वो मुनाफिक है। और आपने नोट किया कि सूरह बकरा के आगाज में ये मौजू आया था लेकिन वहां लफ्ज मुनाफिक नहीं आया था, अब सूरह निसा में लफ्ज मुनाफिक के साथ नाम आया। और मुनाफिक नफक से, नफक कहते हैं टनल को, टनल के एक तरफ से आप जाते हैं ना तो आपको बाहर दूसरी तरफ से निकलना होता है, उसमें टर्न नहीं ले सकते। मुनाफिक इस्लाम के दरवाजे से दाखिल होता है और कुफर के दरवाजे से निकल जाता है, और हाइड करने के लिए होती है टनल, जान बचाने के लिए चूहिया एक टनल में घुसती है, नाफे का उस चूहिया को कहते हैं जो एक जमीन में टनल बनाती है, किसी दुश्मन को देखती है तो उसमें घुस जाती है। वो सोचता है अच्छा अभी बाहर निकलेगी तो मैं इसको पकड़ूंगा, लेकिन वो टनल के दूसरे हिस्से से निकल चुकी होती है। यही निफाक है। जहां दीन कोई तकाजा करे, कोई कुर्बानी, कोई हिजरत, कोई अमल, तो कहते हैं बस छुप जाओ, पीछे हो जाओ, खैर से जाओ। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, मोमिनों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त ना बनाओ, क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह को अपने खिलाफ सरी हुज्जत दे दो? देखिए अल्लाह का चैलेंज है, मेरे दुश्मनों से दोस्ती करके मुझे तुम चांस दे रहे हो, या मुझे कहना चाहिए कि अथॉरिटी लेटर दे रहे हो कि मैं तुम्हें पकड़ लूं? यकीन जानो कि मुनाफिक जहन्नुम के सबसे नीचे तबके में जाएंगे और तुम किसी को इनका मददगार ना पाओगे, अलबत्ता जो इनमें से तौबा कर ले। ये है पहला मरहला। जो इनमें से ईमान तो साथ ही है ना, आमनु ताबू व असलहू, ये तीन दर्जे आप देखेंगे। हाँ, इनमें से जो तौबा कर ले, अपने तर्ज अमल की इसलाह कर ले, और साथ ही साथ वा तसमू बिल्ला, अल्लाह को मजबूती से थाम ले, ये लाजिम है। और अल्लाह को कैसे थामेंगे? वा तसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीया से, वही लफ्ज है इधर भी। अल्लाह को थामना है तो हाथ पकड़ते हैं ना, तो अल्लाह ने किधर से अपना हाथ फैलाया हुआ जमीन पे? इस कुरान की जरूरत में। हब्लुल्लाहिल ममदूद, आसमान से वो अल्लाह ने रस्सी फेंकी हुई है, जिसको पकड़ लोगे अल्लाह ताला का दामन थाम लोगे, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद कर देगा। और फरमाया उसके बाद वखलसू दीनहुम, अपने दीन को खालिस कर लो, दीन के अंदर से सब खोट खपट निकाल दो, इखलास ले आओ, क्लीन एंड क्लियर, डीप डाउन क्लीनिंग कर लो। देखिए बहुत तरीके होते हैं ना क्लीनिंग के, एक सर्जरी क्लीनिंग होती है, लेकिन उसके अंदर भी कपड़ों के अंदर से अगर आपने गंदगी निकालनी है तो कभी आप ब्लीच डालते हैं, कभी आप उसमें कोई और चीजें डालते हैं कि अंदर का मैल खुचैल निकले, दिल के अंदर के तारों में से कुफर की मोहब्बतें निकल जाएं, और उन तरीकों से इंसान तौबा कर ले जो पहले थे। अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हारा दिल शीशे की तरह साफ होगा। फौलाएका मल मोमिनीन, ऐसे ही लोग मोमिनों के साथ हैं, और अल्लाह मोमिनों को जरूर अजर अजीम अता करेगा। ऐसे लगता है कि ये आयतें जो थी ना, ये पढ़ने के बाद लगा कि बस मैं तो पक्की मुनाफिक, खत्म, कर ही नहीं सकती अब ये चार काम, उससे भी मुश्किल। बस अल्लाह ने मुझे पैदा क्यों किया, अल्लाह ने मुझे मरने के लिए और कुफर के लिए डाल दिया। बहुत सब लोग अल्लाह से बदगुमान होते हैं। तो अल्लाह तआला अगली आयत में बड़े प्यार से कहते हैं, ये आयत तदब्बुर भी हो सकती है इस बारे की, अगर आप इस पे गौर करें तो आप देखेंगे कि मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, लोगो अल्लाह को आखिर क्या पड़ी है कि तुमको खामखा अज़ाब दे। इन शकर तुम व आमन तुम वकान अल्लाह शाकिरन अलीमा, अल्लाह ने तुम्हें आग में जलने के लिए पैदा नहीं किया। कभी किसी माँ ने अपने बच्चे को जलाया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पे बैठे हुए थे, कैदियों में से एक औरत का बच्चा उससे दूर हुआ और धूप में खड़ा रोने लगा। थोड़ी देर में माँ बच्चे को ढूंढती भी आई, बावलों की तरह फिर रही थी, बच्चा नहीं मिल रहा। इतनी हांफती कांपती थी कि जिसके बच्चे को देखती उसको दूध पिलाने शुरू होती कि बच्चा नहीं मिल रहा, बच्चा नहीं मिल रहा। और जब दूर खड़ा बच्चा धूप में जलता देखा, फौरन उसको जाके सीने से लगाया और उसके मुंह को नहीं, हाथ को नहीं, उसके पाँव के तलवों को चूमने लग गई। अल्लाह के नबी ये मंजर देख रहे थे, आपने सहाबा से कहा, आपकी आंखें नम थी, आपने कहा कि लोग दोस्तों तुमने देखा एक माँ की मोहब्बत को? अगर कल तुम्हें कोई कहे कि इसी औरत ने इस अपने बच्चे को आग जलाकर उसमें फेंक दिया तो तुम मानोगे? कल अल्लाह के नबी कभी नहीं मानेंगे। ये तो अभी उसके पाँव को नहीं जलता देख सकी, तो फिर आपने फरमाया कि वो जात जिसको अपने बंदे से 70 माओ से भी ज्यादा प्यार है, क्या वो अपने बंदे को आग में जलता देख सकेगा? मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह ने मुझे और आपको जलने के लिए पैदा नहीं किया, दो काम मैंने और आपने करने हैं। शकर तुम व आमन तुम, अगर तुम शुक्र गुजार बने रहो और ईमान की रविश पे रहो, सीधे सीधे रहो, देखिए इसमें कोई लंबे चौड़े काम नहीं, दिल से ग्रेटफुल हो जाओ, शुक्र गुजार हो जाओ कि अल्लाह ने मुझे पैदा किया, अल्लाह के बन के रहे, और ईमान के कि अल्लाह की मान जाओ तो अल्लाह तुम्हें बचा लेगा। कोई चीज अल्लाह सुबहान तआला ने हमारे सामने रख दी, तो यहां आप देखिए इन आयतों को पढ़कर दिल बोझल होता है, तो वही दुआ जो अल्लाह के नबी ने सिखाई कि अल्लाहुम्मा तखिर कल्बी मिनन निफाक वअमली मिनर रिया वलिसानी मिनल कज़िब वअयुनी मिनल खियानती, इस दुआ के साथ से पारा पूरा होता है। हम अल्लाह ताला से दिल की गहराइयों से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे भी दिलों के खोट कपट निकाल दे और हमारे प्यारों के भी। फिर यहाँ एक छोटी सी बात कह दूं कि इस डिप्रेशन में ना जाइए कि शायद हम सब मुनाफिक हैं। बस दफा निफाक नहीं होता, ईमान की कमजोरी होती है। इस पर एक लेक्चर भी है, निफाक के दर्जे और एक है ईमान के दर्जे, तो अगर आप उन दोनों से फायदा उठाते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह पता चलता है, क्योंकि सम टाइम भी शैतान इस ख्याल में डाल देता है कि अब हो तो जहन्नमी गए हो, है ही मुनाफिक पक्के, तो फिर गलत काम कर लो। तो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि वो हमें इससे बचा के रखे, और इस पूरे बारे में हमने जो कुछ पढ़ा सुना उसको अल्लाह ताला हमारे लिए हुज्जत बना दे।